ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। ईरान और इसराइल में एक दूसरे पर मिसाइल हमलों के कारण संघर्ष जारी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने ईरान पर इसराइली हमलों में अमेरिका के शामिल होने के बाद एक वक्तव्य में कहा कि इसराइल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इस बीच ईरान के अधिकारियों ने कहा कि उसकी सेना परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमरीकी हमलों के जवाब का समय, प्रकृति और मात्रा का निर्धारण कर रही है। इससे पहले फोडो, नतांज और इस्फहान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर आतंकी हवाई हमले की प्रतिक्रिया में ईरान के संसद ने एक मत से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हॉर्मूज विश्व के अत्यधिक महत्वपूर्ण तेल और गैस के लिए नौवहन मार्ग है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर गतिरोध जारी रहता है तो तेल की कीमत प्रति बैरल $100 के ऊपर जा सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए विश्व के कुल तरल प्राकृतिक गैस नौवहन तथा वैश्विक तेल निर्यातों का लगभग 20% कारोबार होता है। इस बीच अमरीकी सैन्य अधिकारियों ने अत्यधिक चौकसी बरतते हुए इस क्षेत्र में सैन्य बलों को तैनात किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची आज रूस पहुंच चुके हैं। वे अमरीकी सैन्य कार्रवाई के बाद क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परामर्श कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सुरक्षा परिषद के आपातकालीन विशेष सत्र के दौरान शांति की अपील की।
One path leads to wider war, deeper human suffering and serious damage to the international order. The other leads to de-escalation, diplomacy and dialogue. We know which path is right. And I urge this Council and all Member States to act with reason, restraint and urgency. We cannot and must not give up on peace.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना का संकेत दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान की वर्तमान सत्ता ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए। वैश्विक कच्चे तेल के बाजार में आज शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतें 2% से अधिक बढ़कर इस वर्ष जनवरी के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। ईरान में परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमरीकी हमले के बाद कीमतों में ये उछाल आया है। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी है। इसके जरिए वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग 20% प्रभाव होता है। इस कारण व्यापक चिंताएं पैदा हो रही हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स और निफ्टी दोपहर में 0.5% से अधिक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। राष्ट्र आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की अखंडता को अक्षुण रखने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान सदैव याद किया जाएगा।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अखंड भारत के लिए अपना बलिदान दिया था। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने देश को अपने विजनरी नेतृत्व से लाभान्वित करके इसकी औद्योगिक नीति को तय करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था।
4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। गुजरात की कड़ी विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र कुमार दानेश्वर चावड़ा ने कांग्रेस के रमेश भाई चावड़ा को 39,452 वोट से हराया, जबकि बिसावदार विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इतालिया गोपाल ने भाजपा के किरीट पटेल को 17,554 वोट से हराया। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने नीलांबुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की है। कांग्रेस के उम्मीदवार आर्यादान शौकत ने 77,000 वोटों के साथ जीत दर्ज की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।